レハレハレクリシュナ प्यारे सत्संगियों, अपने घरों में कोरोना के कहर के कारण काबू है, फिर भी उत्साह बना हुआ है हरि कथा को श्रवण करने के लिए। और हरि कथा और कीर्तन इस समय करते हैं, उसका फल भी विश्व के कल्याण के लिए, संसार को संकट से मुक्त करने के लिए भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। भगवत गवाणी भगवत गीता के अंतर्गत हम 14वें अध्याय का इस विचार से अध्ययन कर रहे थे कि हमारे जाम रुके हुए हैं उल्लास नगर में, नरेश जी और दीपा के स्थान पे सामने हमारे मित्र प्रदीप जी रहते हैं। इसलिए जब हम गुणों की बात करते हैं तो उनके संकल्प उनके मन में ऐसा उठा के ये गुण प्रकृति के क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। असल में देखा जाए कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो आचार हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारा जो खान पान है, हमारा जो व्यवहार है, इन सारों के ऊपर केवल गुणों का ही प्रभाव है। ये प्रकृति के गुण हमारा स्वभाव बनाते हैं, हमारा नेचर बनाते हैं। तो इन स्वभावों का, इन गुणों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? इन गुणों का प्रभाव पड़ता है हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर। हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और हमारी चेतना, इसके ऊपर इन गुणों का प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव गुणों का फिर वाणी से, शरीर में वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, और जैसे चखने के इंद्रियों के द्वारा उसका बाहर जो है वो ट्रांसलेशन होता है या बाहर उनका देखने में आता है। लेकिन ये गुण बहुत सूक्ष्म रूप से सारे संसार का संचालन चला रहे हैं। और पूरा भौतिक जगत और आधुनिक जो ये सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, इसके ऊपर रजोगुण और तमोगुण का भारी प्रभाव है। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज जब अमेरिका में उतरे थे 1965 में अगस्त में, तो एक नजर में उन संतों की दृष्टि से अमेरिका का रजो और तमोगुण का प्रभाव इतना प्रबल था कि महाराज के मन में विचार आया कि ये लोग रजोगुण के कारण, इनके अंदर क्रियाशीलता तो है, प्रवृत्ति तो है, रजो रागात्मक, लेकिन किसके लिए प्रवृत्ति है? आसक्ति के लिए। किसमें आसक्ति के लिए? भौतिक चीजों में आसक्ति के लिए, भौतिक पदार्थों में आसक्ति के लिए, भौतिक प्रगति में आसक्ति के लिए और भोग के लिए। तो ये जो श्लोक था कल जहां हमने जिसका वर्णन कर रहे थे, रजो रागात्मक, रजोगुण में आसक्ति होती है। पुरुष पूरा ही आसक्त होता है केवल भौतिक संपत्ति इकट्ठे करने के लिए, भौतिक भोग के लिए, आध्यात्मिक रूप से एक प्रकार से अंधा ही होता है। और तृष्णा, उसकी तृष्णा कहते हैं कि आशा तृष्णा न मरे, आदमी मर जाता है लेकिन इच्छाएं नहीं मरती। ये इच्छाएं हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती हैं। और तमोगुण के लिए कल के श्लोक में हमने पढ़ा था, तमोगुण अज्ञानता के कारण है। ज्ञान की परिभाषा, सामान्य ज्ञान की परिभाषा ये है कि शरीर और आत्मा दो चीजें हैं। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है। और शरीर प्रकृति का बना हुआ है और ये भौतिक जगत है और भगवान है। तो एक भौतिक जगत को समझना, मटेरियल वर्ल्ड को समझना, एक इससे अलग भगवान है जिसकी सत्ता से एक ये जगत नहीं, ऐसे अनंत कोटि और ब्रह्मांड और लोक, वो सब उनके निर्देश में भौतिक प्रकृति चला रही है। और तीसरा जीवात्मा। तो सातवें अध्याय भगवद गीता के ऊपर ध्यान देंगे तो भगवान ने कहा दो शक्तियां इस संसार में प्रबल रूप से काम कर रही हैं। और किसकी शक्तियां? भगवान कहते हैं मेरी शक्तियां। एक शक्ति है भौतिक जगत की, ये प्रकृति जिसको मटेरियल वर्ल्ड अंग्रेजी में कहेंगे, या कहेंगे भौतिक जगत। और ये भौतिक जगत, ये भौतिक प्रकृति तीनों गुणों की बनी हुई है, और ये सारा संचालन तीनों गुणों के माध्यम से चलाती है। और दूसरी भगवान की शक्ति है हम जीवात्मा। हम जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति का मतलब ये है हमारे को स्वतंत्रता है कि हम भौतिक तीन गुणों के प्रभाव से प्रभावित होके इस संसार में सुख दुख भोगें, या हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करके भगवान की अंतरंग शक्ति, भौतिक जगत है बाहर अंग शक्ति, और अंतरंग शक्ति भगवान की, जैसे लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी भगवान की अंतरंग शक्ति है, सीताराम तो सीता जी भगवान की अंतरंग शक्ति है, राधा कृष्ण तो राधा भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो हम अंतरंग शक्ति का शरण लें या भौतिक शक्ति के आश्रित होके तीनों गुणों के कारण संसार में दुख और सुख भोगें और जन्म और मृत्यु के चक्कर में चले, ये हमको स्वतंत्रता है। और हम भगवान की बीच वाली शक्ति है, उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। जैसे समुद्र का किनारा होता है, एक तरफ सूखा होता है, एक तरफ पानी होता है। अब हम खड़े हैं बीच में, हमारी इच्छा है तो सूखे में खड़े हैं, हमारी इच्छा हो तो पानी में जाएं, ये हमारी इच्छा है। ऐसे ये समझ लेना चाहिए कि हमारे को, हम ये बात ये थी सातवें अध्याय की, हम कह रहे थे कि भगवान की दो शक्तियां इस संसार के में काम, संसार में काम कर रही है। एक भौतिक प्रकृति जो तीन गुणों के द्वारा संचालन करती है, और एक हम जीव आत्माएं जो तटस्थ भगवान की शक्ति है, जो अपने कारणों, कर्मों के कारण भौतिक शरीर में बंध गए हैं तीन गुणों के प्रभाव से। तो ये अब हमारी स्वतंत्रता है। तो पहले इन गुणों को समझेंगे कि इन गुणों का प्रभाव क्या है, हम कौन से गुण के प्रभाव में किस वक्त रह रहे हैं, तब हम इन गुणों से आस्ते आस्ते अपने आप को मुक्त करके। ये दो श्लोक और भी बहुत महत्वपूर्ण है। देवी एष गुणमयी मम माया दुर्तया, भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति है मेरी माया है तीन गुणों से बनी हुई, इससे छूटना बहुत मुश्किल है, इसने सबको बांध रखा है, इससे छूटना मुश्किल है। तो भाई कोई रास्ता है छूटने का? तो भगवान एक ही रास्ता बताए, ये माम प्रपद्यन्ते मायामेतान तरन्तीते। जो भाग्यशाली भगवान का शरण लेता है वो माया के प्रभाव से, तीनों गुणों से के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ये संसारी लोगों के लिए श्लोक है कि संसार में भौतिक प्रकृति ने भौतिक गुणों के प्रभाव से स्वभाव के कारण संसार में सबको भोग में बांध के रखा है। दूसरी तरफ ये श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है गीता का, महात्मा नस्तुमां पारत देवीं प्रकृतिमाश्रिता। दूसरी तरफ महात्मा है जो मेरी अंतरंग शक्ति के आश्रित हैं, वो प्रकृति के आश्रित नहीं है, तीनों गुणों से परे हैं, वो मेरी अंतरंग शक्ति के आश्रित हैं। महात्मा नस्तुमां पारत देवीं प्रकृतिमाश्रिता, शरण लिया हुआ है, महात्मा नस्तुमां पारत देवीं प्रकृतिमाश, भजन्ते अनन्य मनसो। उनकी पहचान क्या है? अनन्य मनसो, और कहीं मन को भटकने नहीं देते हैं, शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, नाम भगवान हरि के नाम का स्मरण करते हैं, हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं, सततम कीर्तन यंतो माम। उनकी पहचान क्या है? सदा भगवान की कीर्ति गाते रहते हैं। भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो देख लीजिए, संसार में एक भौतिक प्रकृति में बंधे हुए हैं और एक इस उससे मुक्त होके भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रित होके संसार में ही भगवान की कथा कीर्तन से अपने आप को सदा ही आनंद में रखते हैं, दुख सुख से ऊपर उठा लेते हैं। तो कल हमने जहाँ छोड़ा था, तमोगुण अज्ञानता के कारण है और पागलपन से लोग संसार में बांध देता है। अब आगे हम आज के श्लोक को पढ़ेंगे कि इन तीनों गुणों का प्रभाव इस जगत में रहते हुए कैसे उसका प्रभाव देखने में आता है, उनका इन गुणों का प्रभाव जन्म के इस जीवन के बाद क्या प्रभाव दिखाता है, तो कौन से गुण में कोई होता है और वो अगर शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है, ये श्लोक दो है, एक है। यदा सत्वे प्रवधे तो प्रलयम यान्ति देह भृत, अगर सतोगुण जीवन में प्रबल रूप से रहा है, उसकी वृद्धि रही है, ज्ञान उसको ठीक है और उसका शरीर छूट जाता है तो कहाँ जाएगा, तो उत्तम अमलान लोकान, तो वो उत्तम लोकों में जाएगा। उत्तम लोक स्वर्ग से ऊपर के लोगों को उत्तम लोक कहते हैं, स्वर्ग लोक उत्तम लोकों में नहीं आता है, उत्तम है लेकिन अमलान नहीं है। दो शब्द लिखे हैं, तद उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते, अमल का मतलब जहां गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। तो सतोलोक, तो स्वर्ग लोक क्या, तीन लोग आप ऐसे गिन ले तो हम रहते हैं पृथ्वी लोक के, इसको कहते हैं भूलोक, इसके ऊपर भुआ लोक है, उसके ऊपर स्वलोक है, स्वलोक को स्वर्ग लोक कहते हैं, भूर भुआ स्व, इसके बाद जन लोग, तप लोग, महर लोग, सत लोग, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, ये सब भौतिक जगत में है, लेकिन इन लोगों में गुणों का प्रभाव नहीं है। वहां शुद्ध मल रहित जीव सतोगुण में अगर स्थित है तो वहां जाएगा। क्योंकि स्वर्ग के लिए एक और श्लोक लिखा है कि जो पुण्य कार्य करेगा स्वर्ग में जाके भोग करेगा, लेकिन ये तो भोग से थोड़ा ऊपर है, इसलिए ये सतोगुण में शरीर छोड़ने वाला पवित्र जन लोग, सत्य लोग, तप लोग, उनमें जाते हैं। और फिर लिखा है रजसी प्रलयम गत्वा, रजोगुण का जब शरीर छोड़ता है, कर्म संगीशु जायते, वहां जन्म लेता है जहां कर्म करने का अधिकार है। तो कर्म करने का अधिकार केवल इस पृथ्वी पे है और केवल मानव को है, पशु कर्म नहीं कर सकता, वो केवल अपने कर्म का फल भोगता है। बाकी जितनी जोनियां हैं 84 लाख में उनको कहते हैं भोग योनि, जो कर्म किया है उसका फल केवल भोगते। अब देखो, कोई पशुओं में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई शिक्षा, कोई और कुछ नहीं, बस उठो खाओ पियो और मरो, इतना ही करते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं वो। तो केवल मानव है जिसको कर्म करने का अधिकार है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें अर्जुन कर्म करने का अधिकार है, केवल मानव जन्म में कर्म करने का अधिकार है, ये कर्म योनि है। तो रजोगुण में मरने वाला कर्म संगीशु जायते, जहां कर्म करने का अधिकार है वहां उसका जन्म होता है, इसका मतलब वापस इस धरती के ऊपर मानव के रूप में आता है। तथा प्रणस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते, और जो तमोगुण के आलसी हैं, प्रमादी हैं, पागल जैसे जीते हैं, नशा करते हैं, पड़े रहते हैं, पशु हत्या करते हैं, वो नीच जूनियों में जाते हैं। मूड कहते हैं पशु जूनी को, वो नीच जूनियों में चले जाते हैं। बहुत से लोग सनातन धर्म को छोड़ के आत्मा 84 लोक जूनी में जाती है, इस बात को न समझते हैं न मानते हैं। एक बार मरने के बाद अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अगर बुरे करोगे तो नर्क में जाओगे, और दूसरा आपको मौका ही नहीं मिलेगा, तो ये तो भगवान दयालु नहीं हुआ। भगवान अगर दयालु है तो गलती हो जाए तो सुधारने का मौका तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो भाई एक बार गलती हो गई तो सारा बस बाकी अनंत काल तक नरक में ही पड़ा रहेगा, या एक बार भला काम किया तो सारी अनंत काल तक सदा के लिए स्वर्ग में पड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं है। भगवान मौका देते हैं, लोग कहते हैं कि नीचे की जूनी में नहीं जाता है कोई जीव, लेकिन ऐसे कितने दृष्टांत हैं। महाराज भरत जिसके नाम से इस देश का नाम, इस देश का मतलब इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा, दूसरे जन्म में के मैं हिरण की जूनी में चले गए क्योंकि मैं अंत समय हिरण का ध्यान किया, और तीसरे जन्म में जड़ भरत हुए। तीन तीन जन्मों की कथा तो इनकी सीधी सी शास्त्र में मिल रही है। तो नीच जूनियों में जाते हैं, वो संतों के गुरुजनों के बातों में लिखते हैं कि गुरुजी एक बार शिष्यों के साथ जा रहे थे, एक सांप के मरे हुए जो पड़ा था उसका शरीर, उसके ऊपर कितनी चुंटियां वो पड़ी हुई थी। तो गुरुजी हंसने लगे, तो सब शिष्यों ने पूछा, संभवतः गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बात है, तो गुरुजी हंसे तो शिशु ने पूछा हंस क्यों रहे गुरुदेव। बोला ये सांप योनि में आया है, ये पुरहले गुरुजी था, शिशु के केवल माल लेके खाता था और कहीं किसी को आध्यात्मिक शिक्षा दिया नहीं, तो मर के सांप बनाए और ये सब इसको खा रहे। और ऐसे तो गुरबाणी में सीधा लिखा है कि जो ऐसे करके मरेगा वो इस जूनी में जाएगा, जो ऐसे करके मरेगा वो इस जूनी में जाएगा, ऐसे पूरी वाणी है पूरी इस बात की। तो जो तमोगुण में मरेगा वो पशु जूनी में जाएगा, सतोगुण के मरने वाला ऊपर के लोगों में, पवित्र लोगों में जाएगा जहाँ तपस्वी साधु लोग रहते हैं, रजोगुण वाला वापस इस पृथ्वी के ऊपर आएगा जहाँ कर्म करने का और मौका मिलेगा, तमोगुण वाला तो नीच जूनियों में ला जाएगा और फिर आस्ते आस्ते ऊपर बढ़ते 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 फिर वापस मानव तबका आएगा, उसमें समय जरूर लगेगा। और ये तमोगुण वाले बहुत बड़ा भारी कष्ट उठाएंगे, उनको अब दिख नहीं रहा है। अब इस जन्म में क्या होगा, जिस गुण का प्रभाव होगा इस जन्म में क्या होगा। कर्मणः सुकृत स्याहो सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक गुण में जो रहता है सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस कहते हैं अंग्रेजी में सतोगुण को, मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण में जो कार्य होते हैं सुकृतस्याह, एक दो शब्द होते हैं सुकृत और दुष्कृत। सुकृत का मतलब पुण्य कार्य भले काम, और दुष्कृत का मतलब दुष्ट कार्य, दूसरे को दुख पहुंचाने वाले, चोरी के, हिंसा के, व्यभिचार के, दुष्कार्य, इसको कहते हैं दुष्कृता। एक सुकृत्या एक दुष्कृत। तो सतोगुण वाले सुकृत या पुण्य कर्म करते हैं तो निर्मलम फलम, उनका फल क्या होता है निर्मल। निर्मल का मतलब पाप रहित, जिसमें कोई मल नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है, उनका फल क्या है, जीवन उनका पवित्र हो। कल भी ये बात आई थी, क्योंकि उनको जानकारी होती है, उनको ज्ञान होता है इस बात का, उनको विवेक होता है कि गलत क्या है, सही क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। लोगों ने पाप पुण्य की अपनी धारणाएं बना रखी है, लेकिन पाप पुण्य का निर्णय शास्त्र के आधार के ऊपर होगा, हमारे मन से नहीं होगा। तो जो सतोगुण में कार्य करता है उसका फल निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, इसका मतलब वो सुख भोगेगा। जिसका पवित्र फल है उसको सुख, संसार में भी सुख, बाद में भी सुख मिलेगा। रजसस्तु फलम दुखम, अगर रजोगुण में रहेगा तो उसको दुख मिलेगा। क्यों दुख मिलेगा? क्योंकि रजोगुण के व्यक्ति के अंदर विशेष रूप से जो पहचान उसकी है वो है लोभ, और लोभ के कारण वो इतने कामों में अटक जाएगा। अब कोई एक आदमी मानो चाहे कि मैं बहुत बड़ा कारखाना बनाता हूँ तो कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए परेशान रहेगा कि नहीं? फिर कितना मजदूर चाहिए वो आए वो काम करें, उनको उठाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा नहीं? उसके बाद कारखाना चलेगा, चलाने के लिए कितनी परेशानी। तो रजोगुण के व्यक्ति के कार्य का परिणाम हमेशा दुख है और चिंता है। सतोगुण वाला निर्मल है और रजोगुण वाले का फल है दुख। अज्ञानम तमस्य फलम, और तमोगुण वाला तो बिल्कुल अज्ञानी है, वो मूर्ख अज्ञान को भुलाने के लिए थोड़ी देर के लिए नशे का सहारा लेता है। ये नशा करने वाला नशा क्यों करते हैं? क्योंकि चिंता इतनी होती है कि चिंता थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि चिंता को भूल जाते हैं, और इसलिए थोड़ी देर के लिए नशा करते हैं कि आप थोड़ी देर भूल गए, सुबह उठेंगे तो चिंता तो उधर ही पड़ी होगी, कहीं चिंता जाती नहीं है। तो तीनों गुणों का तत्कालीन संसार में फल क्या है? मरने के बाद फल पहले बताया, अब इस संसार में सतोगुण वाला पुण्य कार्य करेगा तो निर्मल फल मिलेगा, शुद्ध फल मिलेगा, सुख उसको मिलेगा, संतुष्टि होगी। रजोगुण वाला क्योंकि बहुत ज्यादा काम में आसक्त रहेगा, धन संग्रह के पीछे लोभ करेगा, इसलिए जो कार्य करेगा उसके अंदर परिश्रम के साथ परेशानी और परेशानी के साथ चिंता और चिंता के साथ दुख लगा रहेगा। और तमोगुण की प्रवृत्ति वाला अज्ञान के कारण हमेशा मूर्खता में जीवन को आरंभ से लेकर अंत तक दुखमय ही उसका जीवन रहेगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वात संजायते ज्ञानम, कहते सत्वगुण में जो रहता है उसके को सही जानकारी होती है। कोई सत्वगुण का व्यक्ति है तो उसकी पहचान क्या है? उससे कुछ पूछोगे तो आपको सही बताएगा कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसको ज्ञान होता है। अभी अभी थोड़ी देर बताया ज्ञान की, संसार में स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो ज्ञान होता है, केवल दो टाइम की रोटी कैसे कमानी, वो असल में ज्ञान नहीं है। ज्ञान असल में वो है जो आत्मा और शरीर को अलग करके समझा सके। गीता को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, आत्म विद्या। तो ये विद्या स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती है। शरीर को चलाने के लिए कमाने की विधि विधान क्या है, ये तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में मिलते हैं। इस ज्ञान से पाप और पुण्य का पता नहीं लगता है, आत्मा और परमात्मा का पता नहीं लगता है, प्रकृति और पुरुष का पता नहीं लगा है, लगता है। इसलिए सत्वगुण वाले ज्ञान, उनको ज्ञान होता है, और ज्ञान जिसको होता है उसको विवेक होता है, और जिसको विवेक होता है वो सही और गलत को समझता है। क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उसको इन सब बातों का पूरा ज्ञान होता है। वो अपने जीवन में आत्मा के लिए भी कार्य करता है और शरीर को भी चलाने का कार्य करता है, दोनों के बीच में संतुलन रखता है। रजोगुणी आत्मा के विषय में बहुत नहीं के बराबर समय कभी कभार निकालता है, केवल शरीर के कार्यों के ऊपर उसका विशेष बल होता है, विशेष ध्यान होता है। इसलिए शांति कहाँ मिलती है, सुख कहाँ मिलता है? आत्मा का जब भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है तब शांति मिलती है, और जब शांति मिलती है तब जीवन में सुख आता है। अशांतस्य कुतः सुखम, अगर शांति है तो सुख कहाँ, शांति नहीं है तो सुख कहाँ से मिलेगा? और शांति कहाँ से मिलेगी? जब मन एकाग्र होगा। और मन एकाग्र कब होगा? जब मन भगवान में लगेगा। मन संसार में लगा होगा तो मन कभी शांत नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन है ही भगवान की विभूति, तो केवल भगवान में जाएगा तभी लगेगा। उस मन को दुनिया में धन में लगा के देखो, घर में लगा के देखो, दुकान मकान में लगा के देखो, थोड़ी देर के बाद वहां से भाग जाएगा, वहां टिकेगा नहीं। मन दुनिया में कहीं नहीं टिकेगा, ये कहावत है, पीपल का पन्न पता, हाथी का कन्न हाथी का कान, और आदमी का मन ये कभी एक जगह खड़े नहीं होते हैं, हमेशा डावा डोल रहते हैं, हवा हो ना हो पीपल का पता हिलता रहेगा, हाथी का कान हिलता रहेगा और आदमी का मन हिलता रहेगा, ये कभी एक जगह बैठते नहीं है। मन कहाँ खड़ा होगा, मन जहां से निकला है वहीं खड़ा होगा। जैसे ये संसार का नियम है, जो चीज जहां की होती है वहां आती है, तब सुख पाती है, तब विश्राम लेती है। मिट्टी है, पत्थर है, आप उठा के कहीं भी फेंको, वापस धरती पे आएगा तभी शांति से रहेगा, और कहीं नहीं रह सके, क्योंकि धरती का ही अंश है। आप दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, आप मोमबत्ती जलाओ, उसकी लौ ऊपर जाएगी, क्योंकि वो सूर्य का अंश है, प्रकाश, वो कभी नीचे नहीं जाएगा। आप पानी कहीं भी गिराओ, समुन्द्र के अंदर जाएगा, समुन्द्र की तरफ जाएगा, क्योंकि समुन्द्र से ही आता है। तो जो चीज जिसका अंश है वहीं जाती है। तो जीव आत्मा भगवान का अंश है, उसको सुख शांति और आनंद की अनुभूति भगवान से संबंध स्थापित करने में प्राप्त होगी। और एक ज्ञान की, एक ज्ञान उसको कहते हैं जो आत्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, तीन चीजों के ज्ञान, किसको सामान्य ज्ञान कहते हैं, तीन चीजों के ज्ञान को, जीव का ज्ञान, जगत का ज्ञान और जगदीश का ज्ञान। जीव, जगत और जगदीश, तीनों को जो समझ सके, जीव क्या है, हम आत्मा, जगत क्या है, ये संसार, और जगदीश क्या है, इन दोनों का स्वामी, इन तीनों का आपस में संबंध क्या है, जीव का जगत के साथ क्या संबंध है, जीव का जगदीश के साथ क्या संबंध है, और जगत का जगदीश के साथ क्या संबंध है, इनको जो जानता है उसको कहते हैं ज्ञान। ये उपनिषदों में, वेदों में कहते हैं जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों को जो समझे वो समझो सतोगुण में स्थित है, उसको ज्ञान है। इससे ऊपर का ज्ञान है, ये ज्ञान भी अपने आप में पूरा नहीं है। सतोगुण के ज्ञान से ऊपर के ज्ञान को कहते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान का मतलब है हमारा भगवान से संबंध क्या है। हम सबका भगवान के साथ एक नित्य संबंध है, हमारा एक भगवान के साथ नित्य संबंध है, और उस संबंध को भूलने के कारण हम इस संसार के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, संसार के अंदर बहुत ज्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं, और सुख दुख के बीच में लटके हुए हैं। हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसको अगर हम जान लें तो हमारे सब दुख समाप्त हो जाएं। एक तो दो प्रश्न ज्ञान के, सतोगुण के व्यक्ति की दृष्टि से एक प्रश्न अगर आपसे पूछ लें कि भाई हम सबको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए दुनिया में, हाँ भाई हम सबको सुख चाहिए, सभी लोग सुख चाहते हैं, तो दूसरा प्रश्न होता है कौन सा सुख चाहिए, सुबह का चाहिए, शाम को चाहिए, संडे को चाहिए, मंडे को, रविवार को चाहिए कि सोमवार को चाहिए, कौन से दिन सुख चाहिए, कौन से समय सुख चाहिए, कहाँ सुख चाहिए, दुकान पे चाहिए कि घर में चाहिए, बाजार में चाहिए कि सिनेमा में चाहिए, कि बंगले में चाहिए कि बगीचे में चाहिए, किससे सुख चाहिए, परिवार से सुख चाहिए, मित्रों से सुख चाहिए, ग्राहक से सुख चाहिए, तो सबका उत्तर एक आएगा, सब समय सुख चाहिए, सब जगह सुख चाहिए, सब से सुख चाहिए, ये सब का उत्तर हमेशा आता है। तब हमारा दूसरा प्रश्न होता है कौन है जो सब समय है, सब जगह है और सब में है, कौन है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है, कौन है? क्या हमारा पैसा धन सब जगह है? क्या हमारे रिश्तेदार सब जगह है? क्या हमारा प्रभाव सब जगह है? नहीं, सब जगह, सब समय और सब में सिवाय भगवान के और कोई नहीं है। तो जो सुख आपको और हमको असल में चाहिए वो तो भगवान से मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा। सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। सुख चाहिए तो भगवान के अलावा और कहीं से नहीं मिलेगा, लेकिन हम बाहर सुख को ढूंढते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं। ज्ञान होता तो हम वहीं से सुख को ढूंढते जहां से, जहां सुख है। अब सुख है ही नहीं तो वहां सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके पास अगर दिल्ली का मैप है, मानचित्र है दिल्ली का, नक्शा है दिल्ली का, उसमें कनॉट प्लेस लिखा हुआ है, और आप कनॉट प्लेस बॉम्बे में ढूंढेंगे तो कहां से आएगा? नक्शा है दिल्ली का और ढूंढ रहे हो बॉम्बे में, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां है ही नहीं। जो आपके हाथ में नक्शा है वो है दिल्ली का और आप डाउन ढूंढ रहे हो बॉम्बे में, तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। सुख है भगवान के पास और हम ढूंढ रहे हैं दुनिया में, तो कहां से मिलेगा? यहां है ही नहीं। भगवान को सुख का सागर कहते हैं, आनंद का भंडार कहते हैं। दुनिया में क्या है? अरे दुनिया बनाने वाला कहते हैं दुखालयम, ये दुख का सागर है। दुख के सागर में सुख ढूंढने वाले अज्ञानी हैं, तब ना मूर्ख हैं, तब ना यहां कहां सुख। अब बताइए इस वक्त संसार में जो ये संकट आया है कोरोना का, कितने लोग इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर को भी संक्रमण हो गया और अस्पताल में पड़ा है, क्या उसके पास पैसे की कमी है? क्या उसके पास शक्ति की कमी है, बल की कमी है? क्या बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े राजा महाराजा, उनको कोई बेचते नहीं है ना? तो ये जो बाकी चीजें हैं भगवान को छोड़ के, इनका, इनके अंदर से हमको सुख मिल जाएगा? ये संभव नहीं। तो ये ज्ञान सतोगुण का हमको ये बताता है कि सुख कहाँ है, क्योंकि सतोगुण में सुख की अनुभूति होती है। वो तब होगी जब सही ज्ञान होगा। और ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? इस श्लोक के प्रभुपाद ने भावार्थ में लिखा है कि जो गुरुजनों के संग में बैठ के, साधुओं के संग में बैठ के, एक शब्द प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हैं, प्रमाणिक गुरु। तो हमने विचार किया प्रमाणित गुरु की, प्रमाणित गुरु की परिभाषा क्या है? प्रमाणित गुरु की परिभाषा है कि शास्त्र के अनुस्वार शिक्षा दे। ऐसे बहुत से गुरुजनों का प्रचलन चल रहा है जिनके पास कोई शास्त्र का प्रमाण है ही नहीं। शास्त्र क्या है पहले ये तो, वैदिक सनातन धर्म में वेद को कहते हैं शास्त्र, गीता शास्त्र है, गीता शास्त्रम इदम ये पठे प्रियत पुमान, गीता शास्त्र है, वेद शास्त्र है, ग्रंथ शास्त्र। जिसके अंदर शास्त्र का प्रमाण नहीं है तो वो गुरु प्रमाणिक नहीं है। गुरु कहां से बात कर रहा है? शास्त्र से बात करनी चाहिए ना, क्योंकि शास्त्र, एक उदाहरण देते हैं कि शास्त्र के वाक्य को भगवान भी मानता है। भगवान स्वयं रामचंद्र अपने पिताजी के मृत्यु का समाचार चित्रकूट में सुना तो पिताजी को पिंडदान करने के लिए आटा तो था नहीं, क्योंकि वनवास में आटा खाते भी नहीं थे, तो इंगूदी के फल का गुदा बनाया और अर्पण करने के लिए मंदाकिनी के किनारे गए तो महाराज दशरथ का हाथ बाहर निकला। तो पूजा कराने वाले पंडित जी ने कहा, रामचंद्र जी ये जो पिंड है ये कुश के घास के ऊपर रखो, यही शास्त्र की मर्यादा है। आपके पिताजी का हाथ निकला है, सबके पिता का हाथ निकलेगा नहीं, तो ये पिंड दान करने की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। तो भगवान ने शास्त्र के नियम का पालन किया और पिंड को कुश के ऊपर रखा। तो शास्त्र का प्रमाण भगवान भी मानते हैं। कृष्ण लीला में एक हास्य के भाव से ये कथा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते थे तो गोपियां यशोदा को शिकायत लगाने जाती थी कि ये हमारे घर में माखन चोरी करने आता है। यशोदा कहती है, 2.5-3 साल का बच्चा है, कितना माखन खाएगा, दे दिया करो इसको माखन का लोंदा। तो एक गोपी कहती है, आ कन्हैया माखन खा ले। तुम माखन खाओ मेरे घर का। बोला क्यों खाऊं तेरे घर का, मेरे पिता के घर में गाय नहीं है, 9 लाख गाय मेरे पिता की है, क्या मैं भी खाऊं, भिखारी हूं तेरे घर का खाऊंगा। बोला फिर चोरी करके क्यों खाते हैं। बोला मैं मेहनत मजदूरी करके खाता हूं, कितना बड़ा मूड़ा उठाता हूं, ऊपर जाके खोलता हूं। तो यशोदा ने कहा तुम्हारे घर का माखन चोरी करता है तो इसको पकड़ के लाना। तो गोपियों ने एक षड्यंत्र बनाया, दरवाजे के ऊपर घंटी बांध दी, खिड़की में घंटी बांध दी, उखल में घंटी बांध दी, छीके में घंटी बांध दी, और कन्हैया को बुलाने गई कि आप अपने मित्रों के साथ आज हमारे घर में आके माखन का भोग लगाओ। कन्हैया अपने सारे सखाओं के साथ में स्तव कृष्ण को लिया, मधुमंगल को लिया और सबको लेकर जैसे श्री धामा के साथ वहाँ पहुँचे तो देखा चारों ओर घंटियाँ लगा रखी। कन्हैया को बड़ा आश्चर्य लगा। सब भक्त कहते हैं प्रभु, भक्त कहने लगे साथी कृष्ण के सखा के आज अंदर गए, घंटी बजेगी गोपी आएगी और गोपी ने पकड़ लिया तो फिर मैया के पास लेके जाएगी। तो कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मैं घंटों के देवता को बुलाता हूँ, हे घंटों के देवता तुम प्रकट हो जाओ। घंटों का देवता आया तो कन्हैया के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कन्हैया बोला तुम कौन हो। बोला महाराज मैं घंटों का देवता हूँ। बोला मैं कौन हूँ, आप तो हमारे स्वामी हैं। बोला स्वामी का धर्म क्या है। बोला आदेश देना। बोला सेवक का धर्म क्या है, आज्ञा का पालन करना। तो फिर सुनो तुम कोई घंटा नहीं बजेगा, हम सब ग्वाल बाल अंदर जाएंगे, घंटा कोई नहीं बजना चाहिए। बोला नहीं बजेगा महाराज, आपकी आज्ञा है। सब अंदर गए, कोई घंटा नहीं बजा। उखल उठाया, भगवान ऊपर चढ़े, चार ग्वाल वालों के कंधों के ऊपर चढ़े, मटके तक पहुंच गए, उखल नहीं बजा। ओ घंटा नहीं बजा, उखल वाला ऊपर बंधा हुआ भी। माखन दे दिया ग्वाल बालों को खाने के लिए, वो खाने लगे। बंदरों को दिया, बंदर खाने लगे। तो बंदर खाते खाते मुंह बिगाड़ने लगे तो कन्हैया को आश्चर्य लगा कि मक्खन कहीं पुराना तो नहीं है, खट्टा, ये बंदर क्यों नहीं खा रहे हैं, मैं थोड़ा चख के देखता हूँ। कन्हैया ने जैसे मुख में माखन की उंगली डाली, सारे घंटे जोर जोर से बजने लगे। अब जोर से जब घंटे बजने लगे तो कन्हैया ने कहा एक घंटे का स्वामी तुमको बोला था घंटा नहीं बजना, ये क्यों बजे। अब घंटा का स्वामी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भगवान शास्त्र में आपने लिखा है कि भगवान को भोग लगे तो घंटा बजे। अब आप माखन खा रहे हैं तो घंटा तो बजेगा, अब आप तो अब घंटा कैसे नहीं बजेगा। अब भगवान कहते हैं कि मेरा ही अपना नियम मैंने ही बनाया है शास्त्र में, तो उसका उल्लंघन मैं भी नहीं कर सकता हूं। तो ये शास्त्र के प्रमाण को मानता है वो प्रमाणिक गुरु है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ भगवत गीता के ऊपर आधारित है। इस शास्त्र इसका नीम है, इसी के ऊपर आधारित है। जीवन में शास्त्र होना चाहिए, गुरु होना चाहिए और साधु समाज, ये तीनों एक दूसरे को सही रास्ते पे चलाने के लिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। गुरु कहता है वो शास्त्र में होना चाहिए और गुरु करता है वो साधु समाज में सम्मत होना चाहिए। तो शास्त्र के गुरुजनों के साथ में बैठकर इस दिव्य ज्ञान को समझना, तब सतोगुण में स्थित होगा। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर, पूरे समाज के अंदर रजो और तमोगुण का इतना भारी प्रभाव है कि लोगों को सुखी करना है तो सतोगुण की शिक्षा देनी पड़ेगी, सतोगुण के सिद्धांतों को समझाना पड़ेगा, सतोगुण की प्रक्रिया में उनको प्रवृत्त करना पड़ेगा। अपने आप नहीं हो सकते क्योंकि प्रायः अपने आप सारे ही तमो और रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित कई जन्मों से हैं। इसलिए सतोगुण के हमें आने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए गुरुजनों का संग करके और उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिलाषा करनी पड़ेगी। ये एक और ये गुरुजन जो शिक्षा देते हैं पूरे विश्व के अंदर, ये गुरुजनों का शिक्षा है, ये निःशुल्क शिक्षा है। ये ऐसे स्कूल और कॉलेज इन्होंने खोल के रखे हैं जिसमें जो आए उसको पढ़ाया जाता है और उससे कुछ लिया नहीं जाता। ये विश्वविद्यालय बड़े अद्भुत हैं। ये गुरुकुल भारत के अंदर 7,000 से ज़्यादा गुरुकुल हुआ करती थी अंग्रेज के ज़माने में। किसी बच्चे से पढ़ने का पैसा नहीं लिया जाता था, भोजन पुस्तक कपड़े भी गुरुजन व्यवस्था करते थे, राजा दे या धनी सेठ दे, लेकिन बच्चों के अभिभावकों से कुछ नहीं लिया जाता था। और 18 विद्याएं सब बच्चों को पढ़ाई जाती थी, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संतुलन रख के पढ़ाई जाती थी। लॉर्ड मेकाले ने देखा कि भारत की ये विद्या पद्धति अगर गुरुकुल की रही तो ये लोग हमारे नौकर नहीं बनेंगे और हम इनके मालिक नहीं बन सकेंगे, हमारा राज यहाँ स्थापित नहीं हो सकेगा। तो उन्होंने लॉर्ड मेकाले ने पहली बार गुरुकुल की पढ़ाई को भारत से जड़ से उखाड़ दिया, गुरुजनों को दंडित किया, दान देने वालों को अवैध दान कहा कि ये गैर कानूनी है, ऐसे करके उन्होंने सारी गुरुकुल पद्धति को बिगाड़ दिया, उजाड़ दिया। और उसने कहा, लिखा चिट्ठी अपने पिता को के, और रिपोर्ट लिखी, ये रिपोर्ट अभी उसकी पड़ी है, गजेट में मिल जाती है, कि जैसे किसान खेत में हल जोतने से पहले, बीज डालने से पहले सारे खेत को साफ करता है, पौधे और पेड़ उखाड़ के बाहर कर देता है, ऐसे हमने भारत की शिक्षा पद्धति को जड़ से उखाड़ दिया है। अब हम कॉन्वेंट अंग्रेजी पढ़ाई का विधि विधान ऐसा डालने जा रहे हैं, भारतीय पढ़ा लिखा होगा लेकिन हमारा नौकर हमेशा रहेगा, उसके पास ये ज्ञान कभी नहीं आएगा जिस ज्ञान के कारण वो सुख प्राप्त कर सकता था, शांति से रह सकता था, संतुष्टि से रह सकता था, वो उसका समाप्त हो जाएगा। ये अंग्रेज जाते जाते ये एक ऐसा ऐसा एक कहा जाए शराब छोड़ के गया है यहाँ, जिससे हमारे सतोगुण के ज्ञान के प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति को ही नष्ट करके चला गया है। उसका प्रभाव हमारी अपने अनुभव से, उनकी वेशभूषा को हमने अपने जीवन की पहचान बना रखी, उसकी वेशभूषा को हमने अपने जीवन की पहचान बना रखी है, और हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की, हमारे आध्यात्मिक गुरुजनों की वेशभूषा को हमने तलांजलि दे दी है और विदाई दे दी। ये एक बात हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि हमारी मानसिकता से अभी अपने आध्यात्मिक शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा और विश्वास बहुत हल्का और कम के बराबर हो गया, और आधुनिक आविष्कारों के ऊपर, विज्ञान के ऊपर अंधा विश्वास है, चाहे वो कल बदल जाए, और हमारे शास्त्र का सिद्धांत जो है वो कभी बदलने वाला नहीं है, जैसा है ये मे मतमिद्यम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये गीता का श्लोक है, भगवान कहते हैं जो मैं ये आपको राय दे रहा हूँ ना, ये बदलने वाले नहीं है, ये मानव जाति के लिए सदा ऐसे ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये कल बदल जाएगी। तो ये जो सतोगुण है, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, जो व्यक्ति रजोगुण का है उसकी पहचान है लोभ, सतोगुण वाले के पास ज्ञान होगा और रजोगुण वाला लोभी होगा, और लोभ सब पापों का बाप है, सारे पाप की प्रवृत्ति लोभ के कारण से होती है, लोभ एक सब पाप कराता है, लोभ के कारण आदमी नीच से नीच कार्य करने को भी तैयार होता है। तो लोभ रजोगुण में होता है प्रमादो मोहो तमसो, और जो तमोगुण में होता है वो पागल जैसा होता है, प्रमादी होता है, नशेई जैसा होता है, भवतो अज्ञानम एवच, और वो मूर्ख अज्ञान है, पागल जैसा रहता है, ये तीनों का परिणाम है, एक के पास ज्ञान है, दूसरे के पास लोभ है, और तीसरा पागल जैसा है, नशे में अपना जीवन बिताता है। ये श्लोक पढ़ के आज की कथा को विराम देते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण में है ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, भगवान के निकट पहुंचेंगे, ऊपर के लोगों की तरफ जाएंगे। मध्यम तिष्ठन्ति राजसाह, रजोगुण वाले इस धरती के ऊपर वापस आएंगे और जहाँ काम छोड़ा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे। जिघन्य गुणवृत्ति स्तो अधोगन छद्धि तामसा, जो नीचे के तमोगुण के प्रभाव से हैं वो नीचे की जोनियों में चले जाएंगे। दोबारा इसको, वही चीज़ को दोबारा कही गई है कि ऐसे वो नीच जूनियों में चले जाएंगे जिनको कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं, और इन शब्दों के साथ इन तीन गुणों की, इसके बाद भगवान कहेंगे कल कि ये सांसे संसार में जो हो रहा है तीन गुणों के कारण हो रहा है, जो इसको जानता है वो असल में बुद्धिमान है, और फिर कहेगा जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठेगा वो मेरे को जान सकता है। तब अर्जुन पूछेगा तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए, तो ये कथा कल करेंगे। हरे कृष्ण। से प्रश्न उत्तर भी थोड़े होने चाहिए, लेकिन अब कल से देखते हैं, पर कल तो